ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय सभा बैठक से राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक 2081 हुआ पारित। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली के 84,40,000 मतपत्रों की छपाई हुई पूरी। दंतमंजन और सौंदर्य सामग्री में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक शीशे की मात्रा पाए जाने को लेकर नेपाल चिकित्सक संघ ने जताई चिंता। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित एक मस्जिद में विस्फोट, कम से कम 31 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा से राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना और संचालन विधेयक 2081 पारित किया गया है। सभा की आज की बैठक में प्रधानमंत्री एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री सुशीला कार्की की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री अनिल कुमार सिन्हा द्वारा प्रस्तुत विधेयक पारित संबंधी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। चर्चा के दौरान उठे प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री सिन्हा ने कहा कि अनुसंधान सहित विभिन्न क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए इस कानून की आवश्यकता है। बैठक में प्रधानमंत्री एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री सुशीला कार्के की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री अनिल कुमार सिन्हा ने सामाजिक संजाल विधेयक 2081 को वापस लेने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। इसी तरह आज की बैठक में सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति का राष्ट्रीय निकुंज से संबंधित नीतिगत समस्याओं पर अध्ययन प्रतिवेदन 2082 पर चर्चा हुई। सांसदों ने कहा कि सड़क संरचना, विमान स्थल और सिंचाई से जुड़ी राष्ट्रीय गौरव की परियोजनाओं के निर्माण में हो रही देरी से आम नागरिकों में निराशा बढ़ रही है, इसलिए सरकार को समय रहते इस ओर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक यही मार्ग 26 कते सोमवार को दोपहर 1:15 होगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि आगामी फागुन 21 गते को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली वाले अब तक 70 चुनाव क्षेत्रों के लिए 84,40,000 मतपत्रों की छपाई पूरी हो चुकी है। आज आयोग में आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलन में आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई ने जानकारी दी कि 32 जिलों के लिए मतपत्रों की ढुआनी की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। प्रवक्ता भट्टराई ने बताया कि अब तक प्राप्त सूचनाओं में से उनकी प्रकृति के अनुसार आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए 181 सूचनाएं साइबर ब्यूरो को, 7 दूरसंचार प्राधिकरण, 40 प्रेस काउंसिल, 47 केंद्रीय आचार संहिता निगरानी समिति और 1 विज्ञापन बोर्ड को भेज दी गई है। आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामलों में अब तक 34 स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, जिनमें से 24 का जवाब प्राप्त हो चुका है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि सभी 77 जिलों के जिला मुख्यालयों में नमूना मतपत्र पहुंच चुके हैं। मतदाताओं के द्वारा होने वाले संभावित अमान्य मतों को रोकने के लिए इन नमूना मतपत्रों को वार्ड के माध्यम से मतदाताओं के घर घर में पहुंचाया जाएगा। फागुन 21 को ही हिमालयी जिलों में चुनाव हो पाएगा या नहीं, इस संबंध में पत्रकारों की जिज्ञासा पर प्रवक्ता भट्टराय ने कहा कि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। विभाग के अनुसार अब तक की स्थिति को देखते हुए मौसम में कोई खराबी नहीं दिख रही है और इसे देखते हुए हिमालय जिलों में भी निर्वाचन कराना संभव है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री डॉ सुधा शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड के स्रोत की सुनिश्चितता और अर्थ मंत्रालय की सहमति के बिना खर्च करने से राज्य पर बड़ा आर्थिक भार पड़ा है। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के 18वें वार्षिकोत्सव को संबोधित करते हुए मंत्री गौतम ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य बीमा के लिए चालू आर्थिक वर्ष में आवंटित 10 अरब रूपये खर्च हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री गौतम ने असंतुष्टि जताते हुए कहा कि बोर्ड के स्रोत सुनिश्चित किए बिना खर्च करने की वजह से वार्षिक 24 अरब रूपये बराबर का दायित्व सृजित हुआ है। उज्यालो नेपाल पार्टी के अध्यक्ष कुलमान घिसिंग ने कहा कि नेपाल को समृद्ध बनाने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। आज राजविराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अध्यक्ष घिसिंग ने कहा कि आर्थिक समृद्धि के लिए बिजली में आत्मनिर्भर और कृषि क्षेत्र का विकास होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनके अनुभव का देश के समग्र आर्थिक रूपांतरण के लिए उपयोग किया जा सकता है। अध्यक्ष घिसिंग ने आगे कहा कि 10 साल के अंदर 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित कर उससे आमदनी की जा सकती है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम को 4G
भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्या आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाल चिकित्सक संघ ने कहा है कि दैनिक प्रयोग में आने वाले दंतमंजन समेत मुंह और दांत की सफाई संबंधी सामग्रियों और विभिन्न सौंदर्य सामग्रियों में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सीसा लीड की मात्रा पाए जाने पर चिंता जताई है। जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्धन केंद्र सेफेट द्वारा सार्वजनिक किए गए अध्ययन प्रतिवेदन में दिखाए गए गंभीर तथ्यों का हवाला देते हुए संघ ने ऐसी चीजों की गुणवत्ता मापन कर कड़ा नियमन करने की सरकार से मांग की है। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार ने कल बैतड़ी के पुरचौड़ी में हुई बस दुर्घटना में मृतकों के परिवारों को मानवीय सहायता के रूप में प्रति परिवार 1,00,000 रूपये देने का निर्णय किया है। प्रदेश सरकार की आज हुई मंत्रिपरिषद बैठक ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों के इलाज खर्च देने का निर्णय किया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री के सचिवालय ने दी। बैतड़ी के पुरचौड़ी नगरपालिका 7 भवने से बझांग की ओर जा रही शादी की बारात से भरी बस पुरचौड़ी सड़क खंड के बड़गांव नामक मोड़ पर कल दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। घायलों में से 23 का डडिलधुरा अस्पताल, 7 का धनगढ़ी स्थित निसर्ग अस्पताल और 5 का बझांग में इलाज चल रहा है। क्षेत्रीय ट्रैफिक पुलिस कार्यालय अतरिया के SP टेक बहादुर जोरा ने बताया कि बस सड़क से लगभग 150 मीटर नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। बांके के नेपालगंज स्थित भेरी अस्पताल में कैंसर सहित विभिन्न रोगों की पहचान के लिए हिस्टोपैथोलॉजी सेवा शुरू की गई है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर निराजन सुवेदी ने बताया कि राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकू काठमांडू से लाए गए उपकरणों और आवश्यक जनशक्ति की व्यवस्था के बाद इस सेवा को संचालित किया गया है। सेवा शुरू होने के बाद समय पर रोगों की पहचान कर तुरंत उपचार संभव हो गया है। साथ ही कैंसर सहित विभिन्न रोगों की पहचान के लिए नमूने बाहर भेजने और रिपोर्ट के लिए लंबे समय तक इंतजार करने की समस्या भी समाप्त हो गई है। ये जानकारी डॉक्टर सुवेदी ने दी। इसी तरह कुछ ही दिनों में बोन मैरो निकालकर जांच करने की सेवा भी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। ये जानकारी अस्पताल ने दी। भारत के मेघालय स्थित एक कोयला खदान में हुए विस्फोट में खोटांग जिले की 12 पोखरी गांव पालिका के एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों की मौके पर मौत हो गई है। मेघालय के उमसांग घाट में संचालित कोयला खदान में गुरुवार को हुए विस्फोट में 12 पोखरी गांव पालिका 1 बड़ा पोखर स्थित सालघारी भंजांग निवासी 27 वर्षीय पूर्ण बहादुर खपांगी मगर और 24 वर्षीय सुरेंद्र खपांगी मगर की मौके पर ही मौत हो गई। इसी घटना में बड़ा पोखर स्थित भंजांग के बम बहादुर खपांगी मगर, कर्ण बहादुर खपांगी मगर, नर बहादुर खपांगी मगर और उदयपुर सौने निवासी ललित बहादुर मगर घायल हुए हैं। भारतीय मीडिया के अनुसार इस विस्फोट में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। रोजगार के लिए ऑस्ट्रेलिया और स्लोवाकिया भेजने के नाम पर 17,50,000 रूपये की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर आज सार्वजनिक किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में कावरे पुलांचौक के 5 खाल नगर पालिका 3 निवासी 35 वर्षीय रूपेश लामिछाने और धादिंग के खानेबा गांव पालिका 3 निवासी 35 वर्षीय हीरा तामांग शामिल हैं। ये जानकारी काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय के प्रवक्ता एवं SP रामेश्वर कार्की ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इस्लामाबाद तारलाई कालाम क्षेत्र के शिया मस्जिद खदीजा तुल कुबरा इमाम बरगाह में विस्फोट हुआ। धमाका आज की नमाज के दौरान हुआ जब मस्जिद भरी हुई थी। कम से कम 31 लोगों की मौत और 169 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई की स्थिति गंभीर है। पाकिस्तान पुलिस के अनुसार आत्मघाती हमलावर ने मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश की। सुरक्षाकर्मियों और भीड़ ने उसे गेट पर रोकने की कोशिश की, फिर उसने बम खुद ही चला दिया। विस्फोट के बाद स्थानीय पुलिस, रेस्क्यू टीम, बम निरोधक दस्ते और संकट प्रबंधन एजेंसियां मौके पर पहुंची। आसपास के अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया और घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है। किसी चरमपंथी समूह ने अभी तक सीधे इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि शुरुआती जांच से ये संकेत मिलता है कि मिलिटेंट समूह जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान या इस्लामिक स्टेट आईएस के से जुड़े तत्वों की भूमिका हो सकती है जो पहले भी शिया अल्पसंख्यकों पर हमले करते आए हैं। ये इस्लामाबाद में सबसे भारी आत्मघाती हमला रहा है जो पिछले दशक में सबसे बड़ा माना जा रहा है। घटना पाकिस्तान में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और आतंकवादी हिंसा की चिंताओं को फिर से उजागर करती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अन्य शीर्ष नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा की है और दोषियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों ने इस हमले की निंदा की है और शोक व्यक्त किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय सभा बैठक से राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक 2081 हुआ पारित। प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली के 84,40,000 मतपत्रों की छपाई हुई पूरी। दंतमंजन और सौंदर्य सामग्री में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक शीशे की मात्रा पाए जाने को लेकर नेपाल चिकित्सक संघ ने जताई चिंता। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित एक मस्जिद में विस्फोट, कम से कम 31 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।